ओम शांति। इस अलौकिक ब्राह्मण संसार के हर एक ब्राह्मण आत्मा की यह दिली ख्वाहिश रहती है कि मधुबन में रह करके विशेष त्याग तपस्या और सेवा का सुनहरा अवसर प्राप्त हो, जिसके माध्यम से हम अपने इस जीवन के लक्ष्य को सुगमता से हासिल कर सकें। तो ऐसी ही एक विशेष आत्मा आदरणीय सुंदर भाई जी के रूप में हम सभी के बीच उपस्थित है, जिनका अपना विशेष लक्ष्य है कि इस ब्राह्मण जीवन में संपन्नता और संपूर्णता को सहज रीति से प्राप्त कर सकें। उसके लिए आपका पुरुषार्थ पर विशेष अटेंशन भी है। आप 1986 में इस ईश्वरीय परिवार से जुड़े और आपको परमात्मा पहचान प्राप्त होते ही आपने अपने जीवन का डिसीजन लिया कि हमें आगे क्या करना है और कैसे करना है। तो आपने थोड़े ही समय में अपने आप को इस ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। आप 1988 से 1999 तक दिल्ली पांडव भवन में अपनी सेवाएं देते रहे और उसके पश्चात आप मधुबन में पांडव भवन में रिसेप्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हम ऐसी विशेष आत्मा का यहाँ आगमन पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में एक विशाल संगठन के बीच में चलते हुए सफलता को हासिल करना यह हम सभी का लक्ष्य है, क्योंकि परिवार के बीच में हर एक आत्मा के संस्कार स्वभाव अपने अपने होते हैं, लेकिन सबके साथ मिलकर चलना, जहां टकराव का मनमुटाव का कोई कारण बनता है उसमें अपने आप को मोल्ड कर लेना और अपने पुरुषार्थ को हमेशा आगे बढ़ाते रहना, उसके लिए विशेष नम्रता का कवच होना अति आवश्यक है। तो आप एक ऐसी विशेष नम्रता के कवचधारी आत्मा हैं। तो मैं आपका पुनः फिर से स्वागत करता हूं और हम चाहेंगे कि आपने इस अलौकिक जीवन में इस रूहानी यात्रा पर चलते हुए जो अनेक प्रकार के अलौकिक अनुभव प्राप्त किए हैं, वह अनुभव हम सभी के बीच में प्रस्तुत करेंगे आदरणीय सुरेंद्र भाई जी।
ओम शांति। तो विश्व शोकेस के मधुबन में रिसेप्शन में सेवा में समर्पित रूप से आदरणीय सुरेंद्र भाई जी से पहला प्रश्न है, आपको ईश्वरीय ज्ञान कौन से वर्ष में प्राप्त हुआ और कैसे प्राप्त हुआ?
ओम शांति। तो 1986 में बाबा की परिचय हमें मिला, लेकिन बचपन से हम बाबा को तो ढूंढ ही रहे थे, लेकिन उस समय हम कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे थे जगन्नाथपुरी ओडिशा में। तो हम मंदिर में लगभग हफ्ते में एक बार दोस्तों के साथ जाते थे, तो जाते समय रास्ते में बाबा की घर आता था, बोर्ड देखते थे, लेकिन हिम्मत नहीं होता था अंदर जाने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी लिखा है, बहनें को ज्यादा हम देखते थे। तो यही आता था कि मन में, भाई ये बहनों का संस्था है और हम गांव में रहने वाले थे, इसलिए इतने ओपन माइंड नहीं थे कि भाई कहीं बाहर जाके फ्रीली किससे मिले ये करे, तो इसलिए थोड़ा संकोच होता था। लेकिन एक बार मंदिर से वापस आते समय मेरा एक दोस्त, हम थे, चलो जाके इतना बड़ा बोर्ड लगाया तो कुछ तो होगा जो कि समाज के लिए कुछ अच्छा होगा ही, तो चलो जाते हैं क्या है अंदर थोड़ा समझने के लिए। तो अंदर प्रवेश किया, गुरुवार सदगुरुवार के दिन था, लेकिन एक बहन जी मिले तो उन्होंने पूछा कैसे आए। तो मेरे दोस्त तो कभी प्रदर्शन देखा था, कुछ इसके बारे में थोड़ा जानकारी था, लेकिन मेरे कुछ भी नहीं था। तो बहन जी ने बड़े प्यार से हमारे से बात की और फिर बताया कि आप 7 दिन का कोर्स के लिए आए। तो फिर हमने 7 दिन का कोर्स शुरू किया। तो लेकिन यहाँ बाबा के घर में आने से पहले, लेकिन जैसे दिसंबर मेरा एंड होता है, नया ईयर आता है, तो उसी समय देखिए जनवरी दिसंबर एंड में अंदर से कि बहुत खुशी होती थी कि नई साल में कुछ बहुत बड़ी चीज प्राप्त होनी है जो हमको बहुत कुछ प्राप्ति कराएगा। लेकिन क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन कोर्स तो चालू किया, लेकिन कोर्स तो कुछ समझ में नहीं, लेकिन अच्छा लगता था कि ये जगह अच्छा है। तो 1986 में पुरी में जब कॉलेज में पढ़ते थे तभी ज्ञान मिला। तो
नेक्स्ट, आप मधुबन में समर्पित होने से पूर्व दिल्ली में सेवा करते थे, तो वहां कितने वर्ष सेवा की और क्या क्या सेवा की?
तो समर्पित होने से पहले की बात है या दिल्ली में भी? अच्छा हाँ, दिल्ली के तो हम जब बाबा के ज्ञान मिले, सबको मालूम है जब निश्चय नश्चा होता है, तो हम जब वहीं कॉलेज में पढ़ते थे, जब सेंटर में जाते थे, तो 18 जनवरी के दिन जब आया पहला नए नए आए थे, लेकिन बहने को जैसे प्रवचन सुना कि दो बातें हमारा दिल दिमाग में बैठ गया कि सत्य की दुनिया आने वाला है, ये कलयुग दुनिया जाने वाला है। और सचमुच वो दो बातें इतने पक्का बैठ गया, बस लगा कि सचमुच ये दुनिया अभी विनाश होना ही है और सत्य की दुनिया आना है। कैसे आना है, कब आना है, वो पता नहीं, लेकिन लगा ये बस बैठ गया। और जो भी हमारा दोस्त थे, जो कि कॉलेज में जो भी मिलते थे, हम सबको बाबा के ज्ञान के सिवाय और कुछ सुनाते ही नहीं थे, और सबको बाबा के घर ले आते थे। और गांव में, क्योंकि पूरी जो है गांव से 60-70 किलोमीटर, जब भी कुछ हॉलीडे होता था जाते थे रिश्तेदार के घर में, जो भी पहचान वाले, बस प्रदर्शनी चित्र ले जाते, सबको यही बताते थे। लेकिन वहाँ तो थोड़ा थोड़ा नए नए थे, जो भी सुनाते थे। तो फिर हम दिल्ली में जब आए, दिल्ली से आने से पहले बाबा से एक बार मिले 87 में, हम नवंबर 2 तारीख को आए थे ग्रुप्स के साथ में, तो इसी ओम शांति भवन में मिले। ये भी हमारा सौभाग्य रहा कि बाबा उसी साल जो लास्ट वर्ष था, जो बाबा व्यक्तिगत रूप में मिलते थे, वरदान देते थे, दृष्टि देते थे, टोली देते थे, तो हमारा भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन हम जब थे वहीं पुरी में, तो मन में आता था कि हम भी जैसे कोई आते थे देश विदेश की, पुरी एक तीर्थ स्थान है, और हमारा सेंटर की भी भाई लोग भी दिल्ली में भी सेवा करते थे, मधुबन भी सेवा करते थे, जो आते थे हम बोलते थे भाई हमको कैसे सेवा की सौभाग्य मिले। तो पहली बार जो बाबा से मिलने आए, तो रास्ते में आते समय दिल्ली भाया होके आते थे, तो दिल्ली में हम शक्ति नगर में रहे, हमारा जो किचन के सुरेंद्र भाई वो भी पहले दिल्ली में रहते थे, तो हम उनको बताते थे कि भाई हमको कभी सेवा का आप मदद हो। तो जाते समय उनको मालूम पड़ा कि भाई आए मिले हमसे, उन्होंने हमको बताया था कि आप जब वापस आएंगे ना यहीं सेवा में रुक जाना है। तो हमने हाँ बोलते, हम आएंगे तो रुक जाएंगे। तो मधुबन जब आए दिल्ली के, जो बेहद बाबा की घर देखे, सेंटर देखे, इतना अच्छा लगा कि सचमुच तो दुनिया में कुछ करना, क्या करना है, कुछ चाहिए नहीं, जो बाबा के घर में हमको मिल रहा है, इतना बड़ा बाबा का मीठा परिवार है। तो बाबा से जब हम मिल रहे थे, क्योंकि बाबा ने इस आत्मा को यही वरदान दिया था कि आप बाबा को और बाबा की सेवा को आगे रखा, जो भी आप शुभ संकल्प करेंगे बाबा जरूर पूरा करेंगे, इसलिए अविनाशी खुशी में रहना। तो हम बाबा की वरदान जो पाए बहुत अपने अंदर और नशा खुशी बढ़ी कि ये भाग्य है जो बाबा भगवान स्वयं व्यक्तिगत रूप में हमको वरदान दिया, इसलिए हम जो शुभ संकल्प करेंगे जरूर पूरा होगा। तो हम जब वापस जा रहे थे तो बाबा की बात याद रहा कि हम भी शुभ संकल्प किया था कि बाबा की सेवा करेंगे, धीरे धीरे निश्चय आने होने लगा कि जरूर बाबा की महावाक्य सफल होगा, हमारा जो इच्छा है कि बाबा की सेवा करेंगे वो पूरी होगा। हम दिल्ली जब वापस पहुंचे तो उस टाइम दिल्ली की गोपाल भाई को लेके हमारा सुरेंद्र भाई दिल्ली शक्ति नगर आ गए कि इनको सेवा में रुकना। गोपाल भाई हमारे से पूछे आप सेवा में रुक सकते हैं? मैं कहा हाँ मैं रुक सकता हूँ, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैं घर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और सेंटर में भी सेवा करते थे। तो उन्होंने सोचा कि अभी साथ में तो छोटी बहन है, इनको कैसे सेवा में रखे। कहने लगे कि आप वापस जाइए, आपको हम बुला लेंगे। तो हम जब दिल्ली में आए तो वापस गए जब तो कोई फोन तो आए नहीं, उस टाइम फोन का तो इतना था ही नहीं, ना मोबाइल था। तो बड़ा मुश्किल से हम जब पुरी में थे तो हम कई अपने बीके भाई बहनों का जो बच्चों को पढ़ाते थे तो उनका घर में देखा फोन है। मैं कह भाई ये फोन लगता है कि ये दिल्ली में हमारे सुरेंद्र भाई से बात करना है ना, हाँ लग जाएगा नंबर है। मैं कह हाँ तो थोड़ा बात करा दीजिए। फिर हमने फोन पे बात किया, भाई आपने बोला था आने के लिए और कुछ फोन नहीं किया तो मैं क्या करूं, मेरा तो कुछ दिल ही नहीं लग रहा है कि पढ़ाई करूं कि और कुछ नौकरी करूं क्या करूं, मेरा तो कुछ है कुछ और इच्छा ही नहीं है। तो उसने बोल दिया कि आ जाओ कोई बात नहीं, आप आ जाओ इधर से। मैं कि भाई मैं आप तो जाऊंगा इतना दूर से, लेकिन आप बात करके रखना वहां का जो बड़े हैं निमित्त हैं। तो नहीं कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा, आप आ जाओ बस। तो हमने कहा चलो ठीक है आ जाएंगे। तो फिर निश्चय किया कि चलना ही है भाई, पता ही नहीं है इतना दिल्ली से ओडिशा से दिल्ली आना है, दो तीन दिन लगता है, रिजर्वेशन होता है तो मतलब ग्रुप के साथ तो बहने करा दिए, अब चलना ही है। और हमारा सेंटर के जो दीदी तो बहुत स्ट्रिक्ट थी, और घर वालों को अगर बोलेंगे भाई हम बाबा की सेवा के लिए जा रहे हैं कौन छुट्टी देगा। पेरेंट्स को मैं तो कोर्स कराया था बाबा के बारे में लेकिन इतना ज्यादा मालूम नहीं था। तो फिर सोचा क्या करें, तो फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर बाबा हमको चाहता है बाबा की सेवा करना है तो बाद में ही बता देंगे लौकिक वालों को, लेकिन अलौकिक वालों को तो बताए वो तो बहन के पास कोई बात रखने वो तो सब डरते हैं कुछ बात करने के लिए, फिर ये तो छुट्टी देगी नहीं और पहले से ही ना कर दें क्या करें। तो फिर हम बाबा को तो बहुत याद करते थे, बाबा क्या करें। तो फिर यही संकल्प है कोई बात नहीं सबको बाद में बता देना है। तो फिर हमने तो ट्रेन में निकल पड़े, पास में पैसा भी नहीं था 150 रुपया ही करीब होगा और टिकट 80 रुपया जनरल टिकट ले ली। और फिर खाना क्या है दो तीन दिन रास्ते में, तो चेबड़ा की 250 ग्राम लिया, थोड़ा चीनी भी लिया साथ में रख लिया और पानी का बोतल शायद होगा कि नहीं होगा वो भी मेरे को याद नहीं है। तो हम चल पड़े फिर कटक से टिकट लेके, और हिंदी भी आता नहीं था और हिंदी आती नहीं थी। तो चलो ठीक है, लेकिन जैसे बाबा गाइड कर रहा है तो कभी अकेले भी कभी इतना दूर भी ट्रेवल नहीं है, लेकिन बाबा है क्योंकि बाबा जन्मपत्र जानता है, वो बाबा ने वरदान दिया कि जो शुभ संकल्प करेंगे हम बाबा की सेवा के लिए चलो निकल रहे हैं। और लग रहा था जैसे बाबा हमको उंगली पकड़ के गोद में बिठा के। फिर दिल्ली में जब पहुंचे कि उस टाइम तो फोन पे तो बताया नहीं थे कौन सी ट्रेन में किस डेट को आएगा, हमने कहा पहुंच जाएगा तो वो आएगा लेने के लिए सुरेंद्र भाई। तो हम जब दिल्ली स्टेशन में पहुंचे देखा कोई नहीं आ गया पीछे तरह, शाम का टाइम हो गया। तो एड्रेस था क्योंकि लेटर के द्वारा थोड़ा करेस्पॉन्डेंस था, एड्रेस था 25 नहीं रोहतक रोड करल बाग, तो बाहर निकले चलो ऑटो वाला मिल जाएगा और पास में तो 40-50 रुपया तो शायद होगा, तो ऑटो वाला को टूटी फूटी हिंदी में बात किया, भाई ये जगह पे हमको पहुंचाना है ना, 10 रुपये ले जाएगा, कोई बात नहीं ले चलो। तो हम फिर जाके दिल्ली पांडव भवन में, तो फरवरी महीना ही होगा, तो उस टाइम में पहुंच गए, तो ऑलराउंड दादी जो गुलजर दादी की मदर थी वो भी एक महारथी थी, तो वो भी थे। तो अभी दिल्ली पांडव भवन हम जब गए तो बहुत अच्छा लगा, विदेशी लोगों का काफी संख्या में आना जाना होता था और मेरे को बहुत अंदर से अंदरूनी खुशी हुई कि जो बाबा की संकल्प वरदान था कि जो शुभ संकल्प पूरा करेंगे, और मेरा इच्छा थी कि बाबा ही घर में ही आ गए। तो उस टाइम तो हमको पहले सेवा वही उधर ही मिली, किचन में सेवा करने के झाड़ू पोंछा बर्तन जो भी मिला, लेकिन बहुत खुशी हुई। दुनिया में मंदिर में तो सफाई करते, गुरुद्वार में जूता भी साफ करते हैं, लेकिन उनका इतना भाग्य नहीं बनता है, लेकिन हमको यहाँ जो बाबा के घर में मिलता है, बाबा के बच्चे तो कितने सौ हजार बनते हैं, लेकिन उसमें से कोई 1% जो कि बाबा की सेवा के लिए तैयार होते हैं, तो उसी आत्मा में हमारा जो कि नंबर है, जो बाबा के घर में रह के रहने का और आने का मौका मिला, तो अंदर से बहुत खुशी होती थी। तो उस टाइम दिल्ली में जब आए, पहले किचन में थोड़ा सुरेंद्र भाई हमको खाना बनाने कैसे वो सिखाते थे, खाना खिलाते थे, झाड़ू पोछा बर्तन तो था ही, तो साथ में विदेशी लोग आते थे बहुत संख्या में, उनका सेकंड फ्लोर तक बड़े बड़े सूटकेस होता उठा के ले चल पड़ते थे, चीनी का बोरी भी पीठ के ऊपर रख के चीनी का और चावल का भी एक एक क्विंटल भी उठा लेते थे एक जगह से स्टोर पे जहाँ किचन में ले जाते थे। और सर्दी भी बहुत है लेकिन, और रात का पहरा भी देते थे, कभी एयरपोर्ट जाते थे रिसीव के लिए, सीएफ के लिए स्टेशन भी जाते थे, तो बहुत अच्छा, और रात का पहरा भी देते थे, तो 24 घंटा से 18 घंटा में शायद सेवा करते थे, लेकिन कभी थकावट की नाम ही निशानी नहीं है। तो लगभग हम जब यहाँ आए, दिल्ली आए, तो सेवा करते, लेकिन बहुत खुशी होती थी गुलजार दादी, बीच में जब बाबा का डेट नहीं होता था दिल्ली आ जाते थे, और ब्रिजोन भाई आशा बहन रहते थे, लेकिन हमारा मन में यही था कि हमने ब्रह्मा बाबा को मामा को नहीं देखा, लेकिन हमारा जो दादी जी मीठी, दोनों दादी जी थे, अलोन दादी, गुलजार दादी, आशा दीदी, ब्रिजोन भाई, तो हमको लगा कि चलो हम उनको नहीं देखा, उनके समान उन जैसे ये आत्मा को संग में रहने को हमारा सौभाग्य मिला, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता था। तो नशा में खुशी में रहते थे, कोई मेहनत तो नहीं लगता, हम ज्यादा सेवा कर रहे हैं, हम बहुत थक गए हैं कि टांग का कोई दर्द है, तो जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता छत के ऊपर चले जाते थे, बस बाबा की याद करते थे। लेकिन दिल्ली तो आए थे लेकिन छुट्टी किससे लिया ही नहीं था, ऊपर जाकर बैठ के मनसा सेवा करते थे, लौकिक के बालों को, अलौकिक के बालों को, तो किसी का संकल्प ही न चले कि भाई हमको छोड़ के गया, हमारा लिए हम बहुत मिस कर रहे हैं, तो उनके मन में यही रहे कि बस ये बाबा की सेवा के लिए गए हैं, भगवान की सेवा के लिए गए हैं, उनका संकल्प न आए कि हमारे पास ही आए। तो मनसा सेवा करते थे कि जहां जहां अपने आजू बाजू गाँव में शहर में नहीं है, वो जो बाबा के बच्चे है वो कैसे समीप आए, कैसे बाबा के सेंटर करे खोले, तो बस छत के ऊपर जाकर मनसा सेवा करते थे। फिर धीरे धीरे सब ठीक हो गया, कोई विघन रूप नहीं आया कि मेरे को वहां कहीं जाना पड़ा लौकिक में, लेकिन हम पूछे मुड़ के देखे नहीं, लेकिन बाबा के परिवार की मदद से आगे बढ़ते गए। तो दिल्ली में हम किचन में सेवा किया, सफाई का भी किया, स्टोर का भी किया, स्टेशन का भी किया, एयरपोर्ट का भी किया, और साथ में कोई आने जाने वाले स्टेशन में पार्टियां अपनी आते थे उनको मदद करते थे। साथ में ऑफिस का भी थोड़ा सेवा किया। पहले आजकल जैसे ईमेल फैक्स है, उस टाइम टेलेक्स था, तो वो ऑफिस में थोड़ा टाइपिंग सीखा था। शांतनु भाई जी रहते थे तो टेलेक्स का भी जो मैसेज देश विदेश का मधुबन का जाना आना वो टेलेक्स के द्वारा होता था। तो उस टाइम शांतनु भाई होते थे, लेकिन वहां से 90 में वो माउंट आबू आ गए। लेकिन इधर किचन का भी सेवा करो, उधर ऑफिस का भी सेवा करो, लेकिन प्यार से करते थे। तो दिल्ली में ये सेवा हमने, ऑलराउंडर दादी थे, हमको ऑलराउंडर सेवा कैसे करना उन्होंने सिखाया। किचन में हमें खाना भी बनाते थे, लेकिन बहुत प्यार से बनाते थे कि जो भी बाबा के बच्चे विदेश की है और दिल्ली के जो भी कभी बड़े प्रोग्राम होता था आते थे, लेकिन बाबा जो ब्रह्मा भजन का महिमा करते हैं, हम बड़े प्यार से वो भजन बनाना कोई बात करते थे ना, इधर उधर देखते थे, बस बाबा की याद में बैठ के प्यार से बनाते थे। तो जो खाए वो भी बाबा को याद करे। तो इस तरह दिल्ली में हमने किचन का ऑलराउंड का सेवा किया।
तो दिल्ली से आप मधुबन आए, तो वहां आने की क्या प्रक्रिया है, कैसे मधुबन में पहुंचे थे?
हाँ, ये भी बात है, लेकिन हमको क्योंकि हमारे साथ में जो रहने वाले थे, जैसे सुरेंद्र भाई थे, ये शांतनु भाई, बख्शी भाई और भगवान भाई, हाँ निरंजन भाई, ऐसे कई भाई मेरा साथी लोग जो थे पुरानी सेवा साथी लोग, वो लोग तो कैसा भी युक्ति से मधुबन आए, तो मन में यही आता था कि भी सब छोड़ के चले गए तो हमें अकेले रह गए हैं। बाबा के परिवार है, लेकिन मधुबन तो सबसे अच्छा जगह है, जहाँ बाबा आते हैं और देश विदेश की सारी जो ब्राह्मण आत्माएं आते हैं, तो वो जगह तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमको बाबा की वो वरदान याद रहता है था कि जो शुभ संकल्प करेंगे बाबा तो पूरा करेगा ही। तो जो अच्छा सेवाधारी को इतना जल्दी सेज तो छुट्टी मिलता ही नहीं है, तो उसमें से हम भी एक जैसे ही थे। हमने क्या किया, बड़ा हिम्मत करके एक बार जब दादी जी गुलजर दादी जी थे, तो हम दादी जी को एक बार दिल की बात बताया, दादी जी हमको कभी मधुबन में सेवा के मौका दीजिएगा, देखिए इतने लोग यहाँ से गए, लेकिन हमको भी कभी चांस दीजिए। और सचमुच दादी जी का तो दिल बहुत बड़ी है, वो किसी सबको मतलब खुश करती है, संतुष्ट करती है। दादी जी ने यही बोला कि देखो सुरेंद्र, कोई अगर सेवाधारी आपकी जगह पे मिल जाएगा जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जरूर आपको छुट्टी मिलेगा। कोई आपकी जगह पर जो किचन का और ऑफिस का कोई ठीक से संभाल लेगा तो जरूर छुट्टी मिलेगी, कोई बात नहीं, बाबा भी आपकी संकल्प पूरा करेगा। तो हमको खुशी हुई, चलो ठीक है, भले टाइम लगेगा थोड़ा इंतजार करना, लेकिन दादी ने बोल दिया और बाबा का वरदान तो है ही साथ में, तो जरूर कभी पूरा होगा ही। तो वो साल 99 मेरे को याद है, आप सबको थोड़ा मालूम है, दुनिया में हलचल हुई थी 99 में, सुपर साइक्लोन हुआ था उड़ीसा में, पुराने लोगों को कुछ कुछ याद होगा। तो जो साइक्लोन था, काफी सारी बहुत सुपर साइक्लोन, काफी लोगों का भी मौत हुई थी, बहुत सारी नुकसान भी हुआ था। और वो जहां हुआ था उस कोस्टल एरिया, हम भी उसी एरिया के थे। तो सचमुच जब हुआ था, एक हफ्ता तक कोई फोन ही नहीं लगा कि हमारा सचमुच लौकिक सके संबंध कोई है या नहीं है। तो एक हफ्ते के बाद पता लगा, चलो नुकसान कुछ भी हुआ मकान का और भी जो भी है पेड़ पौधे का, लेकिन परिवार के सभी लोग सेफ है। तो उसी साल हमने दादी को बोला कि बहुत सारी नुकसान हुआ, तो हम थोड़ी समय के लिए सेवा करके आते हैं। तो दादी ने कहा भले आप जाके आओ, थोड़ा सेवा करके आओ, बहुत लोगों का नुकसान हुआ, बहुत लोग मरे, मौत हुई, उनको थोड़ा सेवा करके आओ। तो हम थोड़े समय के लिए गए, तो दादी ने यही सोचा कि भाई मकान वकान टूट फूट गया होगा, थोड़ा अगर मदद करते हैं तो टाइम लगेगा। और ये भी बोलता था कि कभी मधुबन का सेवा की चांस दीजिए। तो मेरे पीछे दादी एक दो भाई को मैं जहाँ सेवा करता था उनको थोड़ा सिखाया था, और मैं जब गया था जल्दी, मतलब 10-15 दिन में मैं वापस आ गया, तो आते ही मेरी दादी से मिले। दादी मेरे को खुशखबरी सुनाई कि आप बोलते थे मधुबन सेवा के लिए जाना है, तो एक भाई आया, अभी अगर जाना है तो अब जाएंगे, देखो अब यहाँ इतना साल रहे, 12 साल रहे, हम नहीं भेज रहे हैं, आपकी खुशी से अगर जाना चाहे आप जा सकते हैं, रहना चाहे तो और भी हमको खुशी है, जिसमें आपका खुशी है हमारा उसी भी खुशी है। तो मेरे को तो और बस खुशी और दुगुनी हो गई। तो हमने तुरंत कुछ सोचा ही नहीं, हम कहे दादी हमको बस मधुबन के लिए छुट्टी दीजिए आप, तो कहा कि ठीक चलना है तो ठीक जा सकते हैं, फिर कहा कि 1-2 दिन में तैयार हो जाइए। तो ग्रुप जा रहे हैं, कुछ टिकट भी कोई किसका एक्स्ट्रा टिकट है, तो मैंने कहा ठीक है। तो हमको और खुशी हो गई जो बाबा की वरदान याद आ गया, जो शुभ संकल्प पूरा करें और मधुबन के लिए जा रहे सेवा के लिए। हमने बाबा के घर में जब आए, हम अपनी भी पसंद की कभी सेवा हमें कभी कहा ही नहीं निमित्त आत्मा से कि मैं चलो टाइपिंग जानते मैं ऑफिस में करूंगा, किचन में नहीं करूंगा, कि दूसरी सेवा नहीं करूंगा। तो दादी ने कहा ठीक है आप तैयार हो जाइए 1-2 दिन में, तो आपको। और मैंने कभी पूछा नहीं कि क्या सेवा मिलेगा, हमको यही खुशी होगी बस मधुबन में सेवा करने का मौका मिल ही रहा है। तो हमने तुरंत उस टाइम कुछ सोचा नहीं, हाँ कह दी। तो फिर मधुबन में दादी जी ने, प्रकाशमणि दादी जी को बता दिया था कि भाई ऐसा है, यहाँ इतना समय रहा, यहाँ आ रही सेवा के लिए। तो हमने दिसंबर महीना 12 तारीख शायद 99 में हम मधुबन आए, तो दादी ने मिले। और आने से पहले मैं, हम नागराज भाई जो यहाँ रहते थे, तो उन्होंने भी, उनको भी बताया था, संतन भाई की बताया मैं आ रहा हूँ, जहाँ सेवा की जरूरत है, हैंड्स की जरूरत है, हम सेवा कर सकते हैं, आप थोड़ा नजर रखिए कहाँ हम सेवा कर सकते हैं। तो जब आए तो फिर हम रिसेप्शन में, नागराज भाई नया खुला था और जरूरत थी, तो हम रिसेप्शन में आके सेवा करने की हमको चांस मिला। तो 99 में
अच्छा, आप सभी सेवा करते हैं अभी रिसेप्शन ऑफिस में, तो आपके जो सेवा साथी है, आपके सेवा साथी में कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो प्रश्नावली में नहीं है?
अच्छा ठीक है, देखो बाबा के बच्चे तो बहुत विशेषता, हमारे यही दोनों सेवा साथी यही बैठे हैं, है उनका तो क्या कहना। हमारा कुमुद दीदी जी है, आप सब जानते हैं, वो तो मधुबन में सोचता है वो तो नंबर 1 स्टूडेंट है, हैं इतने उम्र में इतना उमंग से, हमें उनको देख के तो हमको लगता है भाई हमको भी इन जैसा बनना है। हमारा अलरण दादी भी, वो भी थी ऐसे ही, तो हम कुमुद दीदी के देखते हैं, इतनी उम्र होते हुए कभी उम्र का सोचते नहीं है, सचमुच वो हमेशा मतलब उमंग उत्साह में रहते हैं, कभी सोचते नहीं कि मैं नहीं नहीं, वो तो उनको का ये शब्द बोल दिया उनको लगता है ये तो कभी है ही नहीं। उन्होंने कहते तो दादी जानकी में कभी कहते हैं क्या मैं रिटायर्ड, हम कई बार कुछ इस तरह लूज शब्द बोलते हैं ना, हमको तो डांट देते, बात तो सही है, क्योंकि हम जैसे सोचते हैं हमको सचमुच हमको ऐसे ही हमारा बड़ी मन और सब ठीक रहता है, लेकिन वो सदा समझते हैं कि भाई मैं इनसे ये विशेषता सीखता हूँ। तो कितना इनका अंदर है पढ़ाई के लिए, बाबा के लिए, श्रीमद के लिए हैं, तो हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। घर में जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, अनुभवी भी होते हैं, हम बहुत सारी बातें उनसे सीखते हैं, क्योंकि उन्होंने देश विदेश में सेवा किया और दुनिया के भी बहुत अच्छे अनुभव है, लौकिक में डॉक्टर रहे, नर्सिंग होम भी चलाए, तो हम कोई देखेगा तो ये साधारण, लेकिन ये बहुत महान है, विशेषता है। और हमारा जैसे शशिकांत भाई, वो भी बहुत पुराने हैं, ग्राम विकास की भी सेवा करते हैं, और वो बहुत सारी उनके अंदर विशेषता है, सदा कैसे अलर्ट एक्टिव, और जो भी आते हैं सबको कैसे संतुष्ट करते हैं, उनके सबके दिल जीतते हैं और जल्दी सबकी दुआएं लेते हैं, है, इस तरह ये भी है। हमारा संदीप भाई जो आते हैं ज्ञान सरोवर से, वो भी बहुत विशेष आत्मा है। इसलिए हम सबको विशेषता देखते हैं तो हमको लगता है भाई देखो बाबा के घर में कैसे अनन्य बच्चे हैं जो बाबा की सेवा के लिए और कितनी बड़ी त्याग करके आए। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है दुनिया में। हम पार्टी में देखते हैं दो चार दिन के लिए आएंगे, कितने बार फोन करते हैं कैसे हो, क्या हालचाल है, मतलब कितने माने फोन करते हैं रहते हैं। लेकिन इनका कितने बड़े त्याग है, वो तो हमेशा के लिए त्याग करके बाबा के घर में आना, लौकिक की जो परिवार की लौकिक की जो भी रस्म रिवाज है बा जो भी सब प्रकार की, कितनी बड़ी त्याग है। हम देखते हैं जो समर्पित बहने हैं जो भी सेवा के लिए आते हैं तो कोई साधारण नहीं है, हैं घर में रहते थे खेते कैसे खाते थे पीते से सोते थे, लेकिन यहाँ बाबा के घर में आए अपनी मर्जी से तो अपने हिसाब से नहीं चल सकते, लेकिन कितना बड़ा त्याग करके जो भी मिले बाबा जो खिलाए जो पिलाए जो सिलाए जहाँ सुलाए। हम देखते हैं सेवाधारियों के जो भी यहाँ रहते हैं किसी बड़े बड़े हॉल में रहते हैं लेकिन कोई आवाज करता है कोई लाइट जलाता है, नहाता तो अच्छी तरह नहाता है लेकिन है तो फिर भी कितने एडजस्ट करते हैं, हैं परिवार में तो आराम से रहते हैं जैसे हम तो इसलिए कितने बड़े त्याग सेवाधारियों का है जो भी यहाँ के रहने वाले हैं जो तो है तो ना। तो अगर हम यही विशेषता देखे कितने बड़ी त्यागी तपस्वी लोग हैं तो फिर अपने अंदर किसी का कमी कमजोरी देखेगा ही नहीं है।
अगर आपस में कोई कमी कमजोरी दिखती है कोई नोक झोंक तो नहीं होती है?
नहीं, बाबा के मुरली में तो यही बताया देखो लास्ट जो दाना है कितने कोयले काले कोयले भी हो लेकिन बाबा की उससे भी प्यार है। क्यों? क्योंकि बाबा को पहचाना है भले कैसा भी है। नंबर बार हम देखते हैं, हम जब दिल्ली में थे गुलजार आजादी की एक बात है, इस तरह अगर बात दिखता है तो उनको धन्यवाद दो, वो आपको आगे जाने के लिए चांस दे रहा है तो इसलिए उसका शुक्रिया अदा करो कि वो पीछे रह रहा है लेकिन आपका आगे जा रहा है। कोई कमी कमजोरी है किसी कुछ भी है तो आप वो कमी कमजोर नहीं देखो क्योंकि आपको आगे जाना है आगे बढ़ना है ऊंच पद पाना है, इसलिए साइड सीन की बात में नहीं जाने का है तो इसलिए डिस्टर्ब नहीं होंगे आप।
क्या आपको बाबा के प्यार में कभी आंसू आए?
बहुत आए
बहुत।
हम
उस समय आपको कौन सी स्मृतियां थी?
बस बाबा ने कहां से हम उठा के कहां पहुंचा दिया और जब बाबा से बातें करते हैं कि बाबा ने कितना प्यार दिया है और कितना मीठा परिवार दिया है और कितनी प्राप्तियां करा रहे हैं जो दुनिया में हो ही नहीं सकता है, जो बाबा की प्यार व महिमा की आप माला स्मरण करो, सच मुझे हंसू तो बहुत बार आता है। मैं जब भी आता हूँ और जब कई बार हम जाते हैं कहीं बाहर जो बहन इतने प्यार से कभी वेलकम सॉन्ग करते हैं गीत गाते हैं तो उस टाइम सबका जो इतना ऊंची नजर से हमको देखते हैं, मधुबन में रहते हैं व पुराने हैं तो उस टाइम भी आ जाता है आंसू तो मेरे को आता ही है। इसलिए सबको आना चाहिए प्यार के आंसू, दुख के आंसू तो नहीं आना चाहिए।
वो आंसू मीठे होते हैं कड़वे?
वो तो बहुत मीठे होती है, हैं?
कौन सी तरफ से आते हैं, इस तरफ से आते हैं इधर से आते हैं?
दोनों तरफ से आते हैं, हैं? इसलिए हम जितने प्यार में और भावना में रहेंगे वो आता ही है तो आना चाहिए सबको क्योंकि बाबा के प्यार में सबको खो जाना चाहिए तो तभी आंसू आएगा। ऐसे ऊपर ऊपर से कितने भी ज्ञान आए वो
तो बाबा से प्यार कैसे बढ़ाए जो आंसू आ जाए?
तो बाबा से रू रोहन करे, बाबा आपके बनने से हम कहाँ थे और कैसे आपका बने हैं, आपने हमको क्या 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 दिया, जो बाबा कहते प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ तो ये लिस्ट बनाए। जो बाबा कहते सिर्फ ज्ञान न हो उसमें भावना हो कि सचमुच मैं बाबा से बना हूँ तो ऐसे मैं किसको देख के नहीं बना हूँ, बाबा आपको ही देख के बना हूँ और मैं अपना ही भाग्य बना रहा हूँ और मैं ही आगे बढ़ने के लिए आया हूँ। जितने जिगरी से प्यार से आप बाबा से रू रुहान करेंगे और बाबा से जो मिला आपको वो स्मृतियाँ अगर रहेगी तो फिर आपको प्यार की आंसू आएगी।
अच्छा, आंसू आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आपने कभी भटकती आत्माओं का सामना किया? अगर नहीं किया तो भविष्य में आप कैसे उनका सामना करेंगे? क्या योजना बना रखी है?
तो मैं भटकती हुई आत्माओं का तो सामना नहीं किया, मेरे नजदीक में तो नहीं आए, लेकिन कई बार इबिल्स वेल्स कई आत्माएं आ जाते हैं। हम देखा हिस्ट्री हॉल के पास एक बहन के शरीर में कोई आत्माएं आ गए, तो उस टाइम देखा तो है, लेकिन भाई लोगों ने उसको, हमारा शिवराज भाई उसके जब ब्रुकिटी को दबा रहा था, सचमुच ऐसे तो उसको कुछ टेक्निक मालूम है, तो बस दबाता रहा थोड़े समय में सचमुच फिर नॉर्मल हो गए। तो हमने इस तरह देखा, बाकी कईयों से सुना भी है, एक एक शरीर में दो तो चार आत्माएं भी आते हैं। तो जैसे बिल्सल आपको मालूम है, एक माता यहाँ सेवा में थी, जो उसका देवर जो हरि भाई ओम निवास संभालता उड़ीसा का था, तो एक बिल्सल उसके शरीर में आते थे, कोई तांत्रिक ने, कोई उसको गांव वाले ने उसको नुकसान करने के लिए उसके अंदर भेजते थे। हमारा श्रीमद भाई थे तो पता लगा, उसने बताया, उससे धीरे धीरे प्यार से बात करने लगे। और उसने शुरू शुरू में तो अपनी बातें में बातों कौन है क्या है बताते नहीं थी, तो प्यार से बात करने धीरे धीरे बताने लगे। उसको भी कोर्स भी कराई, आपको तो मालूम है, उसको रिकॉर्डिंग भी किया था है? तो वो भी बाद में बता दी, मेरा अभी जन्म होने बाबा मेरे को वहां भेज रहे हैं। और बाद में वो आत्मा जो आती थी उसने बहुत पश्चाताप भी किया, मैं इनको जिनके शरीर में बहुत नुकसान किया है, मैं आपको मदद करूंगी है, फिर भी मदद की। और बाद में बोली कि जब मैं जन्म लूंगी फिर लूंगा, आऊंगा आपकी सेवा करने के लिए। तो ऐसे हुई, बाकी सामना करने के लिए सचमुच जितना आपके अंदर जो शरीर पर उनकी और पवित्रता की शक्ति होगी, तो आत्माएं आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम जितना प्यूरिटी की पावर बढ़ाएंगे, जितना आप शरीर रहेंगे, योग की शक्ति बढ़ाएंगे, तो आत्माएं कुछ नहीं कर सकते, आप उन आत्मा का भी उद्धार कर सकते हैं।
आप में कोई अभी ऐसे संस्कार हैं जो अभी भी पुरुषार्थ में बाधक बन रहे हैं? हाँ। और हैं तो उनसे मुक्ति के लिए क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं?
तो कभी कभी कोई हमारा कोई इंसल्ट कर देता है, तो उस टाइम थोड़ा सा संकल्प चलता है। अभी थोड़े से पहले हमारा साथी रहने वाले, तो कईयों के सामने थोड़ा कुछ इस तरह बातें की, तो सूर्य हम तो चुप रह गए कि भाई बाबा तो कहते हैं देखो झुक जाना, कोई आपका हार हो गई वो नहीं है। तो इस तरह कुछ लोगों के सामने मेरा इस तरह बातें बोली, जो बिहेव किए, जो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं उस टाइम चुप रहा। फिर मन में आया, वो जिस तरह बोला, हम भले उस तरह न बोले ऊंची आवाज से कि ऐसे बिहेव नहीं करे उसके सामने कि दूसरे के सामने, तो हमने कहा उसको जरूर कुछ लेसन दे सिखाए, जो आगे के लिए भी वो हो, बदला लेने की भावना नहीं, पॉजिटिवली रहा कि हम उसको रियलाइज कराएं। कुछ समय हम चुप रहे, फिर हमने ये बातें बड़ों तक तो अगर ले लेते सबके सामने और उसके इंसल्ट होता, तो हमने ये तरीका ढूंढा कि उसको दो चार दिन के लिए हम भी साइलेंस रहे हो जाते, साक्षी हो जाता है उसने जो किया उसको जरूर रियलाइज होगा, क्योंकि बाबा के बच्चे बने हैं, शुद्ध भोजन कर रहे, इतने श्रेष्ठ स्थान पर रह रहे, अगर कुछ गलत कोई बोलता है करता है उसको जरूर दिल खाएगा। हमने छोड़ दिया कि उसको रियलाइज करने दे, हमने उसको माफ कर दिया, चलो हमने उसको बदला लेने के बजाय हम उसको इंसल्ट कराए सबके सामने, दूसरे बड़ों को बुला के उसको बिठा के हमें छोड़ दिया। और जो सुन रहे थे देख रहे थे वो भी कोई बाबा के तो बच्चे है ना, तो हमने एक हफ्ता तो छोड़ दिया। बाद में दो चार दिन के बाद उससे बात किया, आप थोड़ा टाइम निकालो, दो मिनट आप मेरे पास आओ, मैं आपके पास आता हूँ, दोनों दो मिनट ही बात करेंगे। वो तो समझ गया क्या बात करना है, फिर भी नहीं आया। फिर जो साथ में थे हमारा, जो देख रहे थे, जो हम जो बिहेव ठीक नहीं किया, उन्होंने उसको भी बताया कि भाई ऐसे ऐसे जो किया उसको बोला। तो धीरे धीरे वो रियलाइज हुआ, मतलब ये है कोई हम तो सबके साथ अच्छे बिहेव करते हैं, लेकिन कई बार कोई गलत करता है उस टाइम वो आता है, लेकिन हम ये अगर पॉजिटिव रहे कोई बात नहीं, बेचारा परवश है, क्योंकि जो गुस्सा कर रहे हैं, जो उल्टा सल्टा ऊंची आवाज बोल रहे हैं, वो तो कोई शक्तिशाली आत्मा है ही नहीं, वो तो कमजोरी है, बेचारा कम वीक है, तभी तो उसका अंदर कंट्रोलिंग पावर है ही नहीं कि बाबा की श्रीमत तो याद ही नहीं है। तो इस तरह अगर कोई कुछ व्यवहार करता है, कुछ कर्म में कुछ ऐसे करता है, हम अगर सुभावना रखेंगे तो जरूर हम उसी टाइम बाबा की श्रीमत माना, बाबा की भी मदद मिलती है, हमारा जीती है, हैं? दादी प्रकाश मणि कहते हैं, हम झुकना माना हम औरों को झुकाना ही है। इसलिए बाबा हमको यही सिखाता है, जितना हम निर्माण निमित भाव से सुभावन से रखेंगे, दूसरी भी बदल जाएगी।
आपको घर वालों ने शादी वादी के लिए नहीं पूछा?
हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो सचमुच मेरा घर में दो बड़े भाई थे, माता पिता थे, मैं इतना उसने देखते थे कि ये इतना खुश है, इतना मतलब स्ट्रांग है कि शायद ये बात करना ही बेकार होगा। उन्होंने कभी मेरे से ये बातें किया ही नहीं है, बल्कि साल में मैं एक बार जाता था, जब भी जाता था सेवा में, तो कहाँ सेवा गांव में नहीं है, सेवा करना बिजी रहता था। घर वाले ने मेरे से न दोनों बड़े भाई ने बात की, ना माँ बाप ने कोई बात की। जरूर जो बुजुर्ग लेडीज होते ना, जो पड़ोस में ये कहती भाई शादी होता, जो भोजी होता था ना, वो तो हमको रह गया। मुझे अच्छा तो कभी खिला देंगे आपको, बहुत बढ़िया, उससे भी बढ़िया खिला देंगे। लेकिन घर वालों ने ना रिश्तेदार ने कोई ने मेरे ये सवाल अभी तक किया ही नहीं।
तो करना चाहिए था उनको करना चाहिए था
नहीं, उनको करना तो चाहिए था, लेकिन वो समझ गए थे भाई हमारा करना ही बोलना ही ये बेकार हो जाएगा। इसलिए किसी का हिम्मत नहीं होता था कि इनको ये बातें सुनाएं बताएं। तो सचमुच मेरे से कोई ये बात किया ही नहीं।
तो कभी ख्याल भी नहीं आया आपको किसी का उद्धार करने के लिए?
नहीं नहीं,
नहीं?
ये कभी ख्याल आया ही नहीं। तो
बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपको कभी साक्षात्कार हुआ या आपसे किसी को आपका साक्षात्कार हुआ?
नहीं, मेरे को खुद का तो कभी कोई साक्षात्कार हुआ ही नहीं, लेकिन कई बार हम जाते थे कोई सेंटर में, पाठशाला में, जब योग में बैठते थे तो बोलते थे आपके पीछे से लाइट आ रही है, जैसे बाबा जैसा दिख रहा है, हैं? तो इस तरह मेरे कोई साक्षात्कार तो नहीं हुआ।
आपसे हो गया, लोगों को देख के कहते थे शादी नहीं करनी है, कहना ही बेकार है, तो एक साक्षात्कार का ही पार्ट था वो भी। तो नेक्स्ट है, मधुबन परिवार के अंग संग रहकर आपने कौन से गुण धारण किए जो आप में पहले नहीं थे?
तो मधुबन में आने के बाद तो हमने ये गुण धारण किया कि ये बेहद का परिवार है, इसलिए हर एक के पार्ट अपना अपना है, लेकिन सब विशेष आत्मा है, क्योंकि बाबा की नजर पड़ी हुई है, बाबा ने चुन चुन कर और ये जो मधुबन में आए हैं तो बाबा ने सिलेक्ट किया है, और वो भी मधुबन में, इसलिए मधुबन वाले जो भी इधर आए हुए हैं कोई ऐसे वैसे पुरुषार्थ नहीं है, बहुत तीव्र पुरुषार्थी है और बहुत बेहद की वैरागी है, वही आत्माएं यहाँ तक आए हैं, इसलिए बहुत बहुत विशेष आत्माएं हैं। तो इसलिए ये बड़ा संगठन है, लेकिन बहुत अच्छा संगठन है, क्योंकि दुनिया में मधुबन जैसा स्थान कहीं है ही नहीं, जो दुनिया में सबसे बड़े त्यागी तपस्वी आत्माएं हैं मेजोरिटी जो बड़ी संख्या में, तो यही स्थान है, और ये स्थान कोई साधारण है, जो ब्रह्मा बाबा जो तपस्वी थे रहे, जितने दादियां रहे महारथी रहे, सबका जो कि तपस्या की हुई स्थान में आए हैं, उनका बहुत बड़ा भाग्य है, पिछले जन्म में कई जन्म में पुण्य किया है तभी इनको ये चांस मिला है, ऐसे ऊंची नजर से दृष्टि से हम देखते हैं तभी हमको अच्छा लगता है कि भाई सब विशेष है।
आपको ब्रह्मा भोजन से कितना प्यार है?
ब्रह्मा भोजन से बाबा की भोग लगा हुआ है तो बहुत प्यार है ही,
तो इसलिए भोग लगा
है? तो इसलिए बाबा जिस भोजन का महिमा करते हैं तो उसका तो प्यार है ही, क्योंकि ये ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं तरसते हैं। तो इसलिए हमको अगर बाबा के याद में और मौन में रह के भोजन करते हैं, हमको जरूर वो भी बहुत अच्छा लगेगा है। थोड़े समय के लिए भले जीव के लिए टेस्ट में, क्योंकि हर एक का अपना अपना टेस्ट है, लेकिन हम अगर बाबा की याद में उसी ऊंची भावना से हम अगर स्वीकार करते हैं ब्रह्मा भोजन, तो ब्रह्मा भोजन है ही तो अच्छा लगता है और सबको अच्छा लगना चाहिए।
आप ब्राह्मणों की उन्नति के बारे में कोई सुझाव बताइए।
तो ब्राह्मण की उन्नति के बारे में यही है कि जो दिनचर्या बाबा ने दिया है अगर उसी पर हम चलते हैं तो हमारा उन्नति होती ही रहेगी। लेकिन जैसे अमृत वेला है, श्री बाबा जो कहते हैं निमिनाथ होकर न बैठे, बस कुछ प्राप्ति करें, जो रू रूहान करे, अलग अलग संबंध से याद करे, या सारा दिन में अगर मनन चिंतन हम करते हैं उसका भी असर अमृत वेला में आता है। तो अमृत वेला और जैसे मुरली जो बाबा कहते गॉडली स्टूडेंट, जो भगवान स्वयं टीचर बनकर मेरे को पढ़ाना आए, और जो रोज बाबा हमको होमवर्क देते हैं धारणा वर्धन उतना ही याद रहे, अगर बीच बीच में रिवाइज करे, और रात को जब सोते समय बाबा मुरली में बताते जैसे अपनी सारी कारोबार जो भी समाचार बाबा को सुनाकर हल्के होकर सो जाओ बस बाबा की गोदी में, तो फिर आपकी उन्नति होती ही रहेगी। इसलिए बाबा ने जो दिनचर्या दिया है, जो श्रीमद है, उसी पर अगर चलते हैं हम आगे बढ़ते रहेंगे।
किसी को और कोई प्रश्न पूछना? किसी को प्रश्न? तो हाँ जी, वर्तमान समय क्या पुरुषार्थ करते हैं?
तो वर्तमान यही पुरुषार्थ करते हैं, तो संगम युग का अभी अंतिम समय जैसे नदी के आता जा रहा है, तो हम अपने अंदर अगर बेहद की वैराग्य वृत्ति की धारण करते हैं कि बस सचमुच दुनिया भी थोड़े समय की, हमको हर बातों में अपने को समेटना है, हमको कोई भी बातों की विस्तार में नहीं जाना है, कौन क्या कर रहा है, कौन दूसरे को ना देखें, हमको परचिंतन में बाह्यत बातों में हम नहीं जाना है। हम जितना अंतर्मुखी बनकर अपने से रूर वहन करें, हम किस लिए बाबा के घर में आए हैं, ब्राह्मण जीवन में क्या लक्ष्य लेके आए जो बाबा के बच्चे बने हैं, जो भी कमी कमजोरी है रोज अपने अंदर झांके, क्या जो हमारा खुद का पुरुषार्थ में विघ्न बनता है, मेरे द्वारा दूसरे जो डिस्टर्ब होते हैं, एक बार दूसरे का संकल्प चलता है, हम कैसे सदा सभी का सहयोगी बने और हम दूसरे भी हमारा सहयोग सब करें, तो और जो भी संतुष्ट रहकर दूसरे को संतुष्ट करना, बस ब्राह्मण जीवन में यही है कि हम सदा आगे बढ़ें, दूसरे को आगे बढ़ाएं, यही लक्ष्य रहता है कि बस हमारे से कोई डिस्टर्ब न हो, ना हम किसी को डिस्टर्ब करें।
तो आपको बाबा से वरदान मिला है शुभ संकल्प फलीभूत होने का ना, तो यहाँ बैठकर अभी आपको शुभ संकल्प आ रहा है कि मैं कल से आऊंगा?
बिल्कुल, मैं यही तो बोलने वाला था, क्योंकि शुरू में हम तो आए थे, हम बहुत धन्यवाद करेंगे जो हमारा अभी का जो ग्रुप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा श्रीमद भाई जो फाउंडर रहे, और बाबा भी बताते रहते कि भाई छोटे छोटे ग्रुप में रहने से उन्नति होती रहेगी। सचमुच हम आते थे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन नहीं आ पाते थे, लेकिन मैं तो यही बोलने वाला था। सर अच्छा हुआ आपने प्रश्न कर दिया, ठीक है हम आएंगे जरूर, हमको अच्छा लगता था, और भी अच्छा हो जाएगा, हमारा संगठन और बड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, हम जरूर आएंगे।